Om Shanti. Good morning. Godly morning. क्योंकि जीवन में जब भगवान आ जाता है तो जीवन के मायने बदल जाते हैं. बदलते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि आज का टॉपिक हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोगों की यही कंप्लेंट होती है कि ठीक है, मेडिटेशन करना चाहिए, हम जानते हैं, समझते हैं, ज़रूरी है, डॉक्टर भी रिकमेंड कर देता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अपनी रूटीन लाइफ में इतने बिजी हैं, शेड्यूल इतना टाइट है कि अब मेडिटेशन करना है ना, उसको अपने शेड्यूल में डालना, एक दो दिन के लिए ठीक है, यहाँ आए हैं, कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो वही शेड्यूल चल जाएगा. अब उस बिजी शेड्यूल के अंदर हम मेडिटेशन कैसे करेंगे, है ना? तो आज का टॉपिक इसलिए आपके लिए है कि इजी मेडिटेशन फॉर बिजी लाइफ सीखेंगे सभी आज. सबसे पहले ये समझना है कि योग लगता क्यों नहीं है, ये भी समझना है कि योग है क्या, कारण क्या है, निवारण क्या है, वो आज इस पूरे सेशन में आप सभी को हम बताएंगे. और मैं समझती हूँ कि एंड ऑफ द सेशन आप समझ जाओगे कि योग लगाना कितना इजी है और उसके लिए आपको स्पेसिफिकली कोई टाइम भी निकालने की जरूरत नहीं है. आपके ही रूटीन में कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करना है वो भी आप सीख जाओगे, है ना? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आपका. जब हम छोटे थे, पैदा हुए थे, तो हर एक माँ यही कहती है कि भगवान ने बच्चा पैदा किया, यही कहते हैं ना? तो उस पल के लिए तो याद आता है कि भगवान की दया से, उसकी कृपा से, विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ये बच्चा मिला है. कोई भी नई चीज हमारे जीवन में आती है तो हम उसका धन्यवाद जरूर करते हैं, लेकिन अगले ही पल वो किसकी हो जाती है? मेरी. अभी तो कहा था भगवान ने दिया, अभी कहते मेरा बेटा, ऐसे होता है, मेरी बेटी, है ना? अभी तो भगवान ने दिया था घर, अभी तो मेरा घर है, ऐसा होता है. इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है ना, और यही होता है. ये होते होते हम भगवान से बहुत दूर निकल आते हैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा. तो भगवान जिसने दिया था वो पीछे छूट जाता है, उसके और मेरे बीच में बहुत बड़ा गैप आने लग जाता है. और देखा जाए तो डे टू डे लाइफ के अंदर हम उसको याद भी करते हैं, आरती गाते हैं, पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, सभी जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? मुंह बोल रहा होता है और दिमाग इधर उधर सब जगह घूम रहा होता है, है ना? मुख आरती गा रहा होता है और मन इसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसे जाना है, फिर वहां जाना है, फिर ये करना, ऐसे ही होता है. सारी दुनिया घूम कर आएगा पर जहां शरीर है वहां नहीं होगा, है ना? फिर हम कहते हैं मन एकाग्र नहीं होता है. याद जिसको करने बैठे हो, जिसके लिए इतना सब कुछ किया है ना, करते हैं ना आरती के लिए, कितनी तैयारियां करते हैं, लेकिन याद उसी की नहीं आती है. सामने मूर्ति है, सब कुछ तैयारी है, पर क्या तैयार नहीं है? मन तैयार नहीं है. वो भटक रहा है कहां, बच्चों में, कर्मों में, इधर उधर, जो करना है सारे दिन में, पिछले दिन में क्या हुआ था, किसी ने क्या कहा था, सब याद आएगा. बस जिसको याद करने बैठे हो वो याद नहीं आएगा. ये प्रॉब्लम है, सबके साथ है ये प्रॉब्लम, ऐसा ही है. और बिजी इतने हैं कि अब अगर कुछ सिखाएं आपको नया, अब जैसे समझो आपको कल के चैप्टर में सीखा परमात्मा कौन है. अब एक तो होता है ना कि जान पहचान नहीं है तो याद नहीं आती है. चलो अभी जान भी होगी, पहचान भी होगी कि परमात्मा कौन है, ज्योति बिंदु है, निराकार है, जैसे आत्मा है वैसे ही है. कल का चैप्टर आप सभी ने किया, लेकिन अब जान पहचान होने के बाद भी अगर मैं ये कहूं कि आप उसे याद करो, तो फिर भी रूटीन इतना बिजी है आजकल की दुनिया में, छोटे बच्चे को भी कहो ना कि बेटा मेरा काम कर दे, तो कहता मैं बहुत बिजी हूँ, है ना, इतना होमवर्क मिलता है ना। बस उनका बस्ता तो आजकल तो इतना मोटा हो गया, हमारा टाइम अलग था और आपको टाइम तो और भी अलग था। हमारे पिताजी बताते हमारे यहाँ तो कोई चिंता ही नहीं करते थे, और आजकल के बच्चे सारा दिन किताबों में घुसे रहते हैं, है ना, कितने बिजी हैं। बच्चा हो या बुजुर्ग हो, टाइम किसी के पास नहीं है। तो फिर ऐसे में हम परमात्मा को याद कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज का सेशन इसी चैलेंज को दूर करने वाला है, है ना। तो सीखेंगे हम, सबसे पहले समझेंगे कि भगवान की याद क्यों नहीं आती है, क्या कारण है। और सिंपल सी बात है, एक छोटी सी बात है, मंदिर में किसी मूर्ति को भी रखना है भगवान की या देवी देवता की, तो वो जगह कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए ना। अब भगवान को किससे याद करना है, मुझे मन से याद करना है। मन साफ है, है साफ, मन साफ है। मूर्ति रखनी है तो जगह साफ होनी चाहिए, याद करना है तो मन साफ होना चाहिए ना। किससे याद करना है, मन से, दिल से। दिल साफ है, हम ये नहीं सिखाएंगे कि आपको चीजें रखनी है, ये करना है, वो करना है, कोई आडंबर नहीं है, कोई रिचुअल्स नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है मन को साफ रखना। अब वो मन साफ नहीं है जिससे हमें भगवान को याद करना है, तो याद रह नहीं पाती, टिक नहीं पाती। क्या है मन में, सारी दुनिया की बातें हैं, क्या क्या है इस पर एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं आपको, कैसे हम मन को बोझिल करते हैं, है ना। बहुत ही कॉमन स्टोरी है, सुनी भी होगी कईयों ने। एक बार एक बच्चा था, बहुत शरारते कर रहा था, तो उसके टीचर ने कहा कि तुम बहुत शरारत करते हो, मैं तुम्हें एक काम देती हूँ। ने कहा क्या काम देते हो, तो उसने कहा कि आप ये ग्लास पकड़ के बैठ जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक इस ग्लास को रखना नहीं। तो उसने ग्लास को पकड़ा, ग्लास में ज्यादा पानी नहीं था, हल्का ही सा था। उसने कहा ठीक है मैं रख लेता हूँ। अब टीचर ने तो कह दिया, और जो स्टूडेंट था, जो बच्चा था, उसने भी हाथ में पकड़ लिया और टीचर कहकर भूल गए। अब क्या हुआ, पीरियड चेंज हो गए, बच्चे के हाथ में ग्लास अभी भी है। अब टीचर तो भूल गया और बच्चे का हाथ दुखने लगा, आधा घंटा हो गया उसका हाथ इतना दुखा। उसके फ्रेंड ने कहा कि रख दे, उसने कहा नहीं ऐसा ना हो दोबारा एक दो एक और पनिशमेंट मिल जाए मुझे, टीचर ने मुझे मार दिया तो भाग कर गया उसका फ्रेंड टीचर के पास और कहा कि भाई कि मैडम मैडम वो रो रहा है, उसका हाथ दुख रहा है। टीचर कहती मैं तो भूल गई थी। देखा उसका हाथ ना पूरा सुन्न हो गया, पूरे लाल लाल से निशान पड़ गए, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया ना। तो डॉक्टर के पास ले गए बच्चे को, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी देर और हो जाती ना तो हाथ इसका पैरालाइज हो जाता। अब सोचो वो तो बच्चा था, अगर हमारे हाथ में ग्लास पकड़ा दिया जाए, उसने आधे घंटा पकड़ा, हो सकता है हम घंटा पकड़े, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, एक स्टेज हमारी भी ऐसी आएगी, है ना, जो वो कंडीशन हमारी भी हो जाएगी ना। अब आप सोचो हाथ में थोड़ी देर के लिए ग्लास पकड़ने से हाथ का ये हाल हो जाता है, और हमारे मन में कितनी पुरानी बातें पकड़ के बैठे हो, पकड़ी है ना, किस किस की बातें। और ऐसा नहीं है अफसोस है उस बात का, बड़ा नाज है, सब याद है मुझे, क्या क्या किया था तुमने, है ऐसा, पता नहीं किस किस की बातें, पुरानी बातें, अच्छी बातें भी नहीं है, दुख देने वाली बातें हैं, परेशान करने वाली बातें, किसी ने टेंशन दिया, किसी ने कुछ बोल दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, जो अच्छा भी नहीं लगता है याद करना, और उन्हें हमने मन के अंदर बुद्धि में पकड़ के रखा है। तो ये जो मन है, ये बुद्धि है, ये पैरालाइज नहीं हो जाएगी, इस पैरालिटिक जिसे पकड़ा ही नहीं जा रहा किसी चीज को, फिर कहते हैं पता नहीं क्या हो गया आजकल मुझे चीजें याद ही नहीं रहती हैं। भगवान को भी तो याद ही करना है ना, अब क्यों नहीं याद रहती हैं? कमजोर मन से याद करते हो, बोझिल मन से याद करते हो। तो जिस मन पर, जिस दिल पर इतने सारे बोझ हैं, जो कमजोर हैं, उसे सर्वशक्तिवान को याद करते हो। जो मन अपवित्र है, जिस पर मैं और मेरेपन का मैल चढ़ा हुआ है, उस मैले मन से उस परम पवित्र परमात्मा को याद करते हो, तो याद ठहर सकेगी? याद ठहर सकेगी? तो क्यों नहीं याद रहती? उसका कारण कुछ बाहर नहीं है, कहाँ है? अंदर है। मन क्या है? दूषित है, मैला है। इसको साफ करना बहुत जरूरी है, क्लीन करना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी, नियत साफ तो मुराद हासिल। फिर कई लोग कहते हैं कि भगवान की मनोकामना मेरी पूरी नहीं करते हैं भगवान जी, उसकी तो मान लेते हैं, मेरी तो मानते नहीं है। चेक करना है, दिल दर्पण को चेक करना है। मन साफ है, दिल साफ है, तो अगर दिल साफ नहीं है तो मुराद भी हासिल नहीं होगी। तो दिल दर्पण को साफ करो, फिर देखो। अब देखो, आंखें है ना, इसके आगे भी अगर थोड़ी देर के लिए चश्मा अगर पहना है, या आंखों के आगे वैसे भी कुछ धुंध आ जाए, तो सामने वाला दृश्य दिखाई नहीं देता है ना, दिखाई नहीं देता। ऐसे ही मन भी अगर मैला हो जाए, तो जहां लगाना चाहे वहां लगता नहीं है, एकाग्र होता नहीं है, भगवान में भी टिकता नहीं है, जहां चाहे वहां लगता नहीं, क्योंकि मन के आगे बहुत सारे पर्दे हैं, अहम के, वहम के, क्या, क्यों, कहां, कैसे, ऐसे, वैसे, अनेक तरह के प्रश्न हैं, ये पर्दे हैं, मन मैला है। तो उसके कारण जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, जहां टिकाना चाहते हैं वहां टिक नहीं पाता। तो पहले क्या करने पड़ेगा, इन पर्दों को, इन बोझों को, इनको पहले अपने मन बुद्धि से हटाना पड़ेगा। साफ, स्वच्छ, क्लीन, क्लियर मन होगा, बोझों से मुक्त होगा, फिर वो टिक पाएगा। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? हम ये नहीं कहेंगे चीजों को साफ करो, इसको साफ करो, हमने क्या करना है? मन को साफ करना है। क्या करना है? करेंगे, करेंगे अभी मेरे साथ, वहां तो करेंगे ही करेंगे, आज हम प्रैक्टिकल में यहीं करना है सब कुछ। यहां नहीं करेंगे तो वहां भी नहीं कर पाएंगे। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं मन को साफ करने की, दिल को क्लीन क्लियर करने की, बोझों से मुक्त होने की। बहुत समय से बोझ लिए घूम रहे हैं, हल्के हो जाते हैं, लाइट, तभी तो लाइट बन पाएंगे। उस लाइट, सुप्रीम लाइट से हमारा मन जुड़ पाएगा, है ना? वो ऊपर वाला है, अब नीचे से ऊपर वाले को याद करना है, तो नीचे जो बोझ है उसे हल्का होना पड़ेगा ना, तभी तो उड़ पाओगे, है ना? तो चलो 2 मिनट में हम बोझ हल्का करते हैं, करेंगे? और ये बोझ हल्का रोज करना, क्योंकि रोज रोज चढ़ा लेते हो, घर में भी रोज रोज गंदगी हो जाती है ना, साफ करते हो ना, झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, वो तो इम्पोर्टेंट है। अब इस मन के मैल को कब साफ करने हैं? कितने कब का है? दिनों का भी नहीं कहेंगे, हाँ, सालों का है, मैं सच बताऊं जन्मों का है। बोझ लेके घूम रहे हैं, साफ नहीं किया है, है ना? इसीलिए याद आती नहीं है, याद चाहते हैं तो भी लगता नहीं है मन, ये कारण है। जब कारण पता होता है ना, तो निवारण होता है, है ना? तो चलो 2 मिनट में मन के मैल को साफ करें, करें, बोझों से मुक्त हो जाते हैं, सब बोझ परमात्मा को दे देना चाहते हैं, दे दे, चलो 2 मिनट के लिए चारों ओर से मन को हटा ले। संपूर्ण ध्यान स्वयं पर, अंतर मन को चेक करें। अब तक मैं दुनिया में कई लोगों से बात करती आई, उन्हें देखती आई, उन्हें जानती आई, आज चेक करती हूं खुद को, मेरे मन में क्या चल रहा है। देखें दिल दर्पण को, कितनों की बातें, कितनों के कर्म, कभी किसी ने कुछ दुख दिया, वो परिस्थितियां, वो समस्याएं मन पर बोझ की तरह कहीं दबी हुई है। देखें यही वो बोझ है जोड़ने नहीं देता, यही वो मेरापन का मैलापन है जो मुझे उस पवित्र परमात्मा से जुड़ने नहीं देता। चलो साफ करें। एक छोटा सा बॉक्स मन ही मन चित्र के रूप में देखें और इस बॉक्स के अंदर मन के सारे बोझ डाल दें, सारी जिम्मेवारियां, सारी प्रॉब्लम्स, सारे टेंशन्स, शरीर की तकलीफ, संबंधों की तकलीफ, दुख, दर्द, परेशानियां, सब कुछ इस बॉक्स के अंदर अच्छे से डाल दें, चेक कर लें। मन के किसी कोने में किसी के प्रति कोई गलत भावना रह तो नहीं गई, कोई कचरा, कोई व्यर्थ, कोई गलत भावनाएं कहीं चिपकी हुई तो नहीं है। सब निकाल दें, साफ कर दें, इस बॉक्स में डाल दें, पैक कर दें बॉक्स को और दिल से कहें परमात्मा को, ये बोझ आप ले लो, दे दें। सच्चे दिल से दे दें और देखें ऊपर से स्वयं ज्ञान सूर्य, शक्तियों का सूर्य परमात्मा अपनी शक्तिशाली किरणों से इस कमजोरियों के बॉक्स को भस्म कर रहे हैं। सदा के लिए नेगेटिविटी, व्यर्थ चिंताएं, टेंशन, परेशानियां समाप्त, एकदम खत्म, जल गया बॉक्स, मेरी सारी टेंशन्स, सारे बोझ खत्म। देखे मन की स्लेट क्लीन हो गई है, क्लियर हो गई है, एकदम स्वच्छ। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा। ओम शांति। तो ये मन की सफाई रोज करेंगे, फिर देखना कैसे मन परमात्मा में लगना शुरू होता है। ये मैलापन लगने नहीं दे रहा था, इस बोझ को, परेशानी को दे दो, साफ हो जाओ। दूसरा कारण, हम अक्सर आरती में गाते हैं। क्या आरती गाते हैं? तन मन धन सब कुछ तेरा तुझको, कि तेरा तुझको क्या लागे। किसने गाई है आरती? सबने गाई, सुनी, सबने सुनी है ना आरती। प्रैक्टिकल क्या करते हैं हम? तन किसका है? तन का लगाते हैं, खुद पर, बच्चों पर, कामों पर। मन का लगाते हैं और धन का लगाते हैं। कहा क्या था? तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। और प्रैक्टिकल क्या है? तन भी मेरा, मन तो है ही मेरा। मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन ये करता है, मेरा मन यहाँ खाना है, मेरा मन ये मन कर रहा है यहाँ जाने का, मन कर रहा है ये करने का, मन नहीं कर रहा है। तो किसका मन है? मेरा मन है। और धन, वो तो मेरा, तो मेरा, तेरा भी मेरा, ऐसा है ना। अभी बोला क्या था? तन मन धन सब कुछ। अब प्रैक्टिकल बात समझे, जहां तन जाएगा, जहां मन जाएगा, जहां धन जाएगा, इन तीनों का अपने आप में कनेक्शन है। चेक करना, जिस बच्चे में ज्यादा तन लगाया है, ज्यादा धन लगाया है, वहीं ज्यादा मन जाएगा, ऐसा है ना। जिस कंपनी में ज्यादा शेयर्स लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, पैसा लगाया है ना, शेयर्स खरीदते हो ना उस कंपनी में, खरीदते हैं भाई लोग, ज्यादा खरीदते हैं, पैसा जहां ज्यादा इन्वेस्ट किया है ना, वहां ज्यादा मन जाएगा। फिर कहते हैं मन लगता ही नहीं है। जहां ज्यादा तन लगाया है, जहां ज्यादा धन लगाया है, वहां ज्यादा मन लगेगा। ये प्रैक्टिकल है, ये नियम है। अब भगवान में कितना धन लगाया और कितना तन लगाया है, उस अनुरूप मन लगेगा, है ना। ये नियम है। अब हम जब कहते हैं कि मन नहीं लगता है, तो उसका कारण ये है कि तन भी नहीं लगाया और धन भी नहीं लगाया, है ना। अब आप कहेंगे कि हम धन कैसे सारा लगा दें भगवान में, उसका भी तरीका बताऊंगी मैं आपको। भगवान को क्या चाहिए? आप कुछ भी नहीं चाहिए आपका है। वो तो दाता है, देने वाला है, कुछ नहीं लेता है, पर तरीका सिखाएंगे आपको ना। हम आज सिखाएंगे योग क्या है। योग का मतलब क्या होता है? पहले भी सिखाया था फर्स्ट दिन। योग यानी जोड़ना। संस्कृत शब्द युज से बना है, योग, है ना। आमतौर पर प्रयोग करते हैं, यूज करें प्रयोग, यूज करना, ये भी योग है। एक और एक का योग दो, दो और दो का योग चार, किसी की मदद मिल गई सहयोग, कोई दूर चला गया वियोग, है ना, यही है ना। तो योग शब्द कोई नया नहीं है, कॉमन शब्द है। प्रयोग करते रहते हैं हम योग का, फिर योग क्यों नहीं लगता है? भगवान में योग क्यों नहीं लगता है? योग लगाना कोई मुश्किल नहीं है, हर पल मन लगा हुआ है। मैं आपको बताऊं, आप सभी योगी हो, सब योगी हो, पर योग लगा कहाँ है, वो इम्पोर्टेंट है ना। योग लगा कहाँ है, है ना। हम छोटे थे, हमारी मम्मी एक स्टोरी सुनाती थी, आपने भी सुनी होगी, है ना। एक बार एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, सब कुछ था, उसकी एक ही कंप्लेंट थी कि भगवान में मेरा मन लगता ही नहीं है। तो उसके मंत्रियों में किसी ने, एक ने बताया कि देखो राजा, आपकी प्रजा में ना एक बहुत अच्छा भगत है, उसमें इतनी ताकत है कि मिट्टी का जो मूर्ति होती है ना, उसमें भी भगवान प्रकट हो जाए, इतनी ताकत है उसमें। तो आप ना उस भगत से मिलो, वो जरूर आपकी मदद करेगा। तो राजा अपना रथ वथ लेकर गया प्रजा के अंदर और किसी से पूछा, भाई वो भगत कहाँ है? उन्हें कहा कि वो तो गया है, किसान है, खेती में गया है, खेती कर रहा होगा, वो खेतों में गया। तो एक किसान जो है वो धान की खेती कर रहा था। वो क्या करते हैं ना, यहां से उखाड़ते हैं, यहां लगाते हैं। राजा ने किसान से पूछा कि भाई वो भगत का है जो कहते हैं कि मिट्टी की मूर्ति से भगवान प्रकट कर देता है। तो उसने कहा, बंदा मैं ही वो भगत हूं, मैं ही वो भगत हूं। तो उसने उसके आगे हाथ जोड़े और कहा कि भाई मुझे वो तरीका सिखा दो जिससे मेरा मन जो है वो भगवान में लग जाए, है ना। वो जाट था, उसने पंजाबी में एक लाइन बोली, उसने कहा, रबदा की पाणा एथो पुटना उथो लाणा, रबदा की पाणा एथो पुटना उथो लाणा। ये लाइन जो है महान सूफी संत की है, है ना, बुल्ले शाह जी ने कहते हैं। तो बुल्ले शाह जी की वाणी में लिखा है, रबदा की पाणा क्या करना है, यहां से हटाना है और वहां लगाना है, यही करना है और कुछ नहीं करना है। हमें भी वही करना है। अभी भी हमारा मन कहीं ना कहीं लगा हुआ है। बहुत सिंपल तरीका, अभी हम सीखेंगे यही तरीका कि भगवान को कैसे याद करना है, यही तरीका सीखेंगे। बहुत सिंपल सिंपल तरीके हैं, सीखेंगे सभी। चलो, आपको कोई स्पेशल टाइम नहीं निकालना है, आपको कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं। बहुत सिंपल तरीके जिससे आप ये नहीं कहोगे कि भगवान को याद, कंप्लेंट्स खत्म, याद आती नहीं है, याद कर नहीं पाते हैं, टाइम मिलता नहीं है, ये सारी एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे। सबसे पहला तरीका सीखेंगे, नंबर वन क्या करना है, बहुत सिंपल। जब भी आप सुबह उठे, अर्ली मॉर्निंग, सबसे पहले क्या काम करना है, गुड मॉर्निंग शिव बाबा। हम भगवान को शिव बाबा कहते हैं, आप कुछ भी कहो, गॉड कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, बाबा कहते हैं ना, तो वो पिता की फीलिंग आती है, फैमिली फीलिंग। तो गुड मॉर्निंग बाबा हम कहते हैं, आप भी कह सकते हो, मेरे साथ बोलो अभी, गुड मॉर्निंग बाबा। मुंह से मत बोलो, मन में ही बोलना भले, अभी मुंह से बोलो, पर घर में जाकर जरूरी नहीं है मुख से बोलो, पर दिल से कहो। क्या कहना है, गुड मॉर्निंग बाबा, है ना, कह सकते हैं। कितनी देर लगती है, सेकंड भी नहीं लगेगा, मन में ही बोलना आप। हम नहीं कहते चीखो चिल्लाओ, आरती गाओ, छाने करो, कुछ नहीं करना है, मन में कहना है गुड मॉर्निंग बाबा। कहते ना, सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, जब भगवान का सुबह सुबह चेहरा देखेंगे। वैसे भी कहते हैं सबसे पहले बड़ों के आशीर्वाद लो, तो सबसे बड़े से बड़ा कौन है, परमात्मा है, तो उसको गुड मॉर्निंग करनी है। तो सब कुछ सुबह से लेकर रात तक गुड होना शुरू हो जाएगा, दिन की शुरुआत अच्छी है ना, शुरुआत अच्छी है तो आधा काम हुआ ही पड़ा है। कर सकते हैं सभी, सब कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है आपको, कर सकते हैं। सेकंड, बहुत इजी, रूटीन में क्या करते हैं, मुंह हाथ धोएंगे, है ना, स्नान आदि करेंगे। तो जब मुख को धो, जब तन को धो, तो साथ साथ मन को भी धोते चलो, साफ करते चलो। कर सकते हैं, कर सकते हैं। सारे दिन में ना पता नहीं कितनों के लिए हमने गलत बोला होता है, मन में गलत भावनाएं अंदर रख लेते हैं, गलत गलत बातें, वृत्तियां, अंदर स्मृतियां चलती रहती हैं। अब जब सारे दिन की मैल को धोने लगे हैं, तन की मैल को, तो मन को भी धो लेते हैं। वैसे भी हम जब काम कर रहे होते हैं, स्नान कर रहे होते हैं, है ना, पेस्ट कर रहे होते हैं, मुंह हाथ धो रहे होते, तो कुछ तो चल ही रहा होता है ना मन में, कुछ तो मन में चल ही रहा होता है ना। अभी क्या करना है, सारे दिन में, पिछले दिन में जिसके लिए गलत भावनाएं आई हैं, कुछ गलत सोचा है, कुछ गलत बोला है, कुछ गलत हुआ है, उसको साफ कर लो। कर सकते हैं, मुख को भी साफ करो, मन को भी साफ करो। सोचो, बिल्कुल साफ करता जा रहा हूं, मन साफ होता जा रहा है, परमात्मा की लाइट से, उसकी शक्तियों से मेरा मन साफ होता जा रहा है। मुख में गुणों की खुशबू, अवगुण निकलते जा रहे हैं, गुणों की खुशबू आती जा रही है। लोग करते हैं ना, माउथ फ्रेश करते हैं, तो फ्रेश करो, माइंड को फ्रेश करो, माउथ को फ्रेश करो, रिफ्रेश हो जाओ। तो ये करना है आपको, बस सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में ये चलता रहे, और कुछ नहीं करना, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है। कर सकते हैं, ट्राई करके देखो। देखो क्या होता है, कोई भी चीज हम शुरू करते हैं ना तो टाइम टेकिंग होती है, लेकिन जब हम रोज प्रैक्टिस करते हैं तो ईजी हो जाता है। शुरू में तो कोई भी काम करते हैं पहले दिन थोड़ी ना होता है ना, थोड़ी सी होता है, लेकिन करते करते वो ऐसा हो जाता है रूटीन का पार्ट, फिर इजी हो जाता है। अब यहां तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है, बस क्या करना है, तन के साथ मन को भी साफ करते जाना है ना। भोजन करते हैं सभी, सब करते हैं ना भोजन, खाना तो सब खाते हैं, माताएं खाना बनाती भी हैं, है ना। अब परमात्मा कैसे हैं पता चल गया, कैसे हैं, लाइट है। उनका स्वरूप कैसा है, बिंदु स्वरूप है। बिंदु कैसी होती है, गोल। अब देखो सारे दिन में कितनी चीजें गोल गोल हैं। अब देखो आपको प्रकृति की और आपके दिनचर्या की कितनी चीजें उस परमात्मा की याद दिला रही हैं। सब चीजें याद दिला रही हैं, लेकिन हम याद नहीं कर रहे क्योंकि मन भटक रहा है। रोटी कैसी होती है, गोल होती है ना, उसको खाते हुए बनाते हुए याद करना मुश्किल है। रोटी याद दिला रही है, अन्न याद दिला रहा है अन्नदाता का, पर याद नहीं कर रहे ना हम। हम तो सबको याद कर रहे हैं, उस अन्नदाता को याद नहीं कर रहे। रोटी याद दिला रही है, गोल गोल है ना। तवा कैसा होता है, चकला कैसा होता है, ऊपर सूरज कैसा होता है, चांद भी वैसे ही होता है। अब दिन में चेक करना कितनी चीजें गोल है, कटोरी प्लेट कितनी चीजें, सब क्या याद दिला रहे हैं। हर कर्म आपको उस करण करावन हार की याद दिला रहा है, लेकिन हम उसकी जगह बाकी सब चीजों को याद कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे होते ना तो कर्म सेवा बन चुका होता है ना। आप देखो हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, है ना, कड़ा प्रसाद मिलता है, लंगर मिलता है, कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, उसका स्वाद कितना अच्छा होता है ना। घर में बनाओ, है ना, वहां भी घी डलता है, यहां भी घी डलता है, वहां भी सूजी है आटा है, यहां भी सूजी है आटा है ना, वैसा स्वाद आता है, आता है, कितना भी डाल लो घी हलवे में, कितना भी घी डालो वैसा स्वाद आता है, कितना भी कुछ कर लो वैसे लंगर वाला स्वाद आता ही नहीं है, आता है, क्या कारण है, क्या कारण है ना। गेहूं का ही बना है, वही दालें हैं, वही आटा है, क्या कारण क्या है, हां जी, वाइब्रेशन का फर्क है, और क्या, भावना, और क्या कारण है, वही सब चीजें हैं। घर में स्वाद नहीं आता है, वहां बड़ा स्वाद आता है ना। उसको प्रसाद गिर जाए थोड़ा सा नीचे से उठा के, और घर के अंदर पता नहीं कितना खाना वेस्ट जाता है रोज, है ना, क्या कारण है, वैल्यू क्यों बदल रही है, वहां किसके लिए बना रहे हैं, है ना, गुरुद्वारे में किसके लिए बना रहे हैं, सतगुरु के लिए बना रहे हैं ना, ईश्वर के लिए बना रहे हैं। मंदिर में किसके लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं। मार्केट से भी लेकर आएंगे ना, उस पर चढ़ाएंगे तो प्रसाद बन जाता है, उसका हो गया। और हम घर में किसके लिए बनाते हैं, बच्चों के लिए, पति के लिए, है ना। तो जिसके लिए बना रहे हैं उसकी याद इंपॉर्टेंट है। अगर घर में भी ये सोचकर बनाए किसके लिए बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, आपके बच्चों के लिए बना रहे हैं। खाना ही बनाना है आपको, वही करना है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको अपना काम छोड़ना है, वही काम करना है, वही खाना बनाना है, पर किसकी याद में बनाना है, किसके लिए बनाना है, शिव बाबा की याद में, परमात्मा की याद में। तो मुश्किल है, आप देखोगे कमाल, खाने का स्वाद बदल जाएगा, खाने में बरकत आने लग जाएगी। थोड़ा भी बनाओगे पूरा हो जाएगा। ये वंडर है कि जब हम भगवान की याद में बनाते हैं, कोई भी चीज जब भगवान को अर्पित हो जाती है, काम किसके लिए कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं, जब तक ये मन में है कि सरकार के लिए कर रहे हैं या किसी प्राइवेट कंपनी के लिए कर रहे हैं या घर वालों के लिए कर रहे हैं, तब तक थकावट होगी। याद रखो, थकावट होगी। जब ये होगा कि किसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, उसकी याद में रहकर कर रहे हैं, उसके द्वारा दी गई सेवा कर रहे हैं, थकावट नहीं होगी। सेवा भावना आना, ये परिवर्तन कर देता है मन को। आपको वही काम करना है जो आप रूटीन में कर रहे हैं, पर आप क्या करना है, क्या करना है, उसकी याद में करना है। कोई भी काम करना शुरू करो, आ जाओ मेरे साथ। शिव बाबा को कहो, आ जाओ मेरे साथ। क्या कहना है? बाबा, बोलो शिव, दिल से कहना, शिव बाबा आ जाओ, चलो मिलके करते हैं। कर सकते हैं? फ्रेंड की तरह कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। मैं ये नहीं कहूंगी कि उसके लिए स्पेशली बैठो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। क्या करना है? आ जाओ मेरे साथ। अकेले नहीं करना है। आप सब्जी बनाते हो, खाना बनाते हो, बच्चों से पूछते हो क्या खाओगे आज, पति से पूछते हो क्या खाओगे, या खुद से भी पूछते हो आज क्या बनाना चाहिए। कभी उससे पूछा कि आज आप क्या खाओगे? पूछा कभी शिव बाबा से? किसी ने पूछा है? है कोई? देखो माता जी ने पूछा, और किसी ने पूछा है? एक दो बस, तीसरा तीन। तो आज से अभी क्या करना है? खाना बनाएंगे ना, उससे पहले उससे पूछना आज क्या बनाओगे। आप देखोगे रिस्पॉन्ड मिलेगा आपको। बात करना तो शुरू करो, बात से बात बन जाएगी, बिगड़ी हुई बातें भी बननी शुरू हो जाएंगी, ये पक्का है। अभी आपको अनुभव सुनाऊंगी मैं, बहुत वंडरफुल अनुभव है, मैजिकल अनुभव है इस याद के ना। क्या करना है आपको, सबसे पहले समझ गए ना? क्लियर है ना सभी को? क्या करना है? खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, जो बनाते नहीं है वो खाते तो है ना, चपाती सब गोली तो होती है ना, है ना? तो जब खाओ तो उसकी याद आनी चाहिए। कौन खिला रहा है? वो खिला रहा है, उसकी याद में खाना है। अभी आज खाएंगे ना, तो याद रखना, ठीक है ना? यहीं से शुरू कर दो ये प्रैक्टिस, है ना? भोजन करते हुए, कहीं जाओ कहीं आओ, आजकल सेफ नहीं है आना जाना, तो क्या करना है? आ जाओ मेरे साथ। चले आप, सीट भी नहीं लेगा आपकी गाड़ी में, सीट नहीं लेने वाला, कुछ नहीं करेगा आपकी, बस आपको दिल से कहना है आ जाओ मेरे साथ, है ना? मैं बताऊं आपको, यहाँ पर एक फैमिली आई थी, तो उन फैमिली के अंदर उस जो मदर थी, उसने मुझे कहा कि दीदी मेरी जो बिटिया है इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ना डरती है स्कूल वैन में जाने से। प्रैक्टिकल बात है, ये कहानी नहीं है, ये सच्ची बात बता रही हूँ। तो मैंने उसकी बिटिया से पूछा कि बेटा क्या बात है, आप वैन में क्यों नहीं जाते हो? तो उसने कहा कि दीदी मैंने ना एक फिल्म देखी थी, उसमें ना स्कूल की वैन जो है वो नदी में गिर गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसी बहुत सारी मैंने फिल्म देखी, तो मुझे डर लगता है, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो मैंने उसे कहा कि देखो बेटा एक काम करना, अभी जब भी जाओ ना स्कूल, तो शिव बाबा को कहना आ जाओ मेरे साथ, और फील करना कि शिव बाबा मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं, और आप देखना उस शील्ड के अंदर आप हमेशा प्रोटेक्टेड फील रहोगे, करोगे, आपको लगेगा कि जैसे खुद भगवान आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपको रोज बस ये कहना है बाबा आ जाओ मेरे साथ, और फील करना है कि उनकी पावर्स वो किरणों की तरह मेरे चारों ओर फैल रही हैं, और मैं उनके सुरक्षा कवच में बिल्कुल सुरक्षित हूँ। बस यही करना है रोज सुबह स्कूल जाने से पहले। उसको ये तरीका सिखा दिया। बच्चे होते हैं ना, मन के साफ होते हैं, फटाफट सीख भी जाते हैं। मैंने तो बता दिया। अब कुछ महीनों के बाद उसकी मदर का फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आपसे बात करेगी। तो उसकी बिटिया ने उनसे बात की और कहा कि दीदी पता आज क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? देखा आज ना मेरी वैन ना उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। तो उसने बड़ी अच्छी बात बताई। उसने कहा पता है दीदी, वैन में जब एक्सीडेंट हुआ ना, सबको चोट लगी, ड्राइवर को भी चोट लगी, मुझे चोट नहीं लगी। मैंने कहा क्या हो, क्यों चोट नहीं लगी? कहते आपने मुझे बताया था ना शिव बाबा को साथ लेके जाना और अपने चारों ओर सुरक्षा कवच बनाना, और मेरे को ना चोट नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं, तो मुझे थैंक यू कह रहे थे। और ये केवल उसकी नहीं है, मेरे खुद के जीवन की भी। मैं जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में, और मेरे खुद का अनुभव है कि हमेशा जब भी हम फील्ड में जाते थे, अनेक तरह के लोगों से मिलना, नेगेटिविटी लोगों से भी मिलना होता था, लेकिन मेरा रूटीन आज तक का भी रूटीन है, जब भी रूम से निकलना, जब भी घर से निकलना, जब ऑफिस के लिए भी निकलना, एक काम करना, आप आज से रूटीन बना लो, बस दिल से कहना आ जाओ शिव बाबा मेरे साथ। कह सकते हैं, है ना? दिल से कहना आ जाओ बाबा मेरे साथ। बोलना एक बार बोलेंगे, मुख से बोलेंगे, या भी आपको वहां पर मन में बोलना, भले मुख से नहीं बोलना, बोल लो मेरे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा आ जाओ। और जब कभी दिक्कत हो तो कहना मेरी मदद करो। क्या कहेंगे? एक बार और बोलो मेरे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा आ जाओ, मेरी मदद करो। जब भी कोई दिक्कत हो ये मंत्र याद रखना, भूलना नहीं। मेरी लाइफ का ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ऑफिस के अंदर। छोटे, ऐसा नहीं सोचो कि बड़ा काम हो, इंसिडेंट हो तब बुलाएंगे मुझे। नहीं, घर में कोई चीज खो जाती है, नहीं मिल रही है, ऑफिस में कोई फाइल खो जाती है, मेरी लाइफ का अनुभव है, कभी फाइलें नहीं मिलती होती हैं ऑफिस के अंदर, कभी कोई चीज हो जाती है, कभी कोई बात हो जाती है, डर लगता है कोई कारण ये ना हो जाए। बस एक ही काम करना है। मैं तो आपको बताऊं, बॉस होते थे ना, अक्सर बॉसेस ऐसे होते हैं ना, वो हमेशा गर्म ही रहते हैं। मैं जब भी उसके कमरे में एंटर करने जाती थी ना, पहले बाबा को कहती थी आ जाओ मेरे साथ। सच्ची बता रही हूं, और कभी भी कोई गड़बड़ नहीं हुई है। कैसे वो छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी बात में हमारी रक्षा करता है, ये आपको एक्सपीरियंस करना है। मैं सच बताती हूँ, आपने अपनी लाइफ में ना अब तक, सुबह से लेकर शाम तक, अब तक की लाइफ में बहुत कुछ मिस किया है। अब नहीं मिस करना प्लीज। अगर आप सुबह से लेकर रात्रि तक उसको अपना साथी बना लो, उसके साथ चलो, आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। खुद सर्वशक्तिमान जब आपके साथ होगा, संसार में किसी मनुष्य आत्मा की ताकत नहीं जो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। और योग लगाना क्या है? और कुछ नहीं करना है, याद ही तो करना है, जैसे बच्चों को याद करते हो, प्यार है ना उनसे, है ना? जैसे कारोबार को याद करते हो, प्यार है ना उससे, है ना? वहां से मिलता है ना कुछ, ये बहुत कुछ देने वाला है दाता, है ना? बस उसको याद करना है, प्यार करना है, दिल से कहना है बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा आ जाओ, मेरी मदद करो। कह सकते हैं ना? सब कर सकते हैं ना? सब कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? इजी है ना? डिफिकल्ट है? कोई स्पेशल कुछ नहीं करना है आपको। जो काम कर रहे हो बस आते हुए जाते हुए उसको अपने साथ रखो, अपने साथ बिठा लो। गाड़ी में बैठे हो ना, सीट नहीं लेगा पर उसको साथ बिठा लो। स्कूटर चलाओ तो उसको पीछे बिठा लो। मैं बता रही हूं आपको, ऐसे वंडरफुल एक्सपीरियंस होंगे, आपने कभी सोचे नहीं। अगली बार आप आओगे आपको खुद ऐसे मैजिकल एक्सपीरियंस होंगे। मैं, हम दिल्ली में थे, एक गांव की बात है, एक माता, गांव की माता, अनपढ़ माता, आप सोचो। उसने अपना अनुभव सुनाया, उसके हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया था, तो अकेली रहती थी घर के अंदर, खेती करती थी। तो उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं रोज जब खेती करने जाती थी तो अपने घर की चाबी जो है अपनी पड़ोसन को देकर जाती थी, खेतों में खो ना जाए। उसकी फ्रेंड थी, फास्ट फ्रेंड थी, तो आती थी, चाबी लेती थी और चली जाती थी। एक दिन उसकी जो फ्रेंड थी ना पड़ोसन, उसकी नियत खराब हो गई। उसे लगा कि घर में अकेली रहती है, पता नहीं क्या क्या रखा होगा, जरा देख तो लूं क्या है उसके घर में। होती है ना कहीं की आदत। तो वो गई खेतों में, चाबी तो उसके पास थी ही। चाबी से उसने उसके घर का दरवाजा खोला और खोलते डर गई और दोबारा बंद कर दिया। शाम को जब उसकी वो फ्रेंड आई चाबी मांगने, तो उसने, वो हरियाणा साइड की थी, वो दिल्ली की है, दिल्ली में जो आपको पता ही है नरेला साइड के होते हैं अधिकतर भाई, तो उससे पूछा उसने भाई कि भाई तू तो बड़ी खराब है, वो जैसे बोलते हैं ना हरियाणा में, तू तो बड़ी खराब है, घर में बुड्ढे को अकेला छोड़ के जाती है। तो उसने कहा मेरे घर में तो कोई है ही नहीं। उसने कहा नहीं, मैंने देखा है तेरे घर के अंदर, पकड़ी तो गई वो, देखा है उसने, मैंने देखा तेरे घर में एक बुड्ढा बैठा हुआ है और तू रोज उसको इतने सालों से अकेला छोड़ के जाती है। उसने कहा चल खोलते हैं दरवाजा। दरवाजा खोला, कोई नहीं था। पीछे देखे ना ब्रह्मा बाबा की फोटो ना, उसके घर में भी बाबा को याद करती थी। तो उसने कहा यही बुड्ढा बैठा हुआ था यहाँ पे, खटिया थी ना उसकी, उसने कहा यही बुड्ढा बैठा था। तो उस माता ने कहा तुझे क्या लगता है तेरे भरोसे घर छोड़ के जाती हूँ, मैं रोज घर निकलती हूँ ना तो बाबा को कह के जाती हूँ, बाबा मेरे घर की रक्षा करना, तो वो मेरे घर की रक्षा करता है, तुझसे तेरे भरोसे नहीं जाती हूँ, तो मेरे बाबा ने मेरी रक्षा की। तो है तो शिव बाबा ज्योति बिंदु, परंतु किसी को साकार रूप में रख कर सामने वाले को कैसे उसे अपना कार्य कराना है, ये वंडरफुल बात है। बहुत वंडरफुल कहानियां हैं, केवल माताओं की नहीं है, भाइयों की भी बहुत है, है ना, भाइयों की भी बहुत है। बहुत वंडरफुल स्टोरीज हैं जो कल को आपकी स्टोरी भी बन सकती है। यही तो याद है और क्या है। अभी तक बच्चों पर विश्वास करते हैं, क्या मिला है, अनुभव कहता है जीवन का। अपने दिल की बात किसी मनुष्य आत्मा को बताने से क्या होता है। आजकल किसी का भी हाजमा दुरुस्त है, कोई नहीं रख सकता है। आज से अपना बहुत बेस्ट फ्रेंड कंपेनियन किसको बनाएंगे, शिव बाबा को बना लो। कहा था बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, बनाया तो नहीं ना आपने, तो उसको अपना फास्ट फ्रेंड बना लो। जो भी मन में बातें हो ना, कुछ भी हो, कुछ भी कैसी भी हो, सच्चे दिल से उसको कह दो। कह सकते हैं बिल्कुल साफ मन से, जो भी मन में हो, क्या कहना है आपको, बस बाबा को बुलाना है और दिल से कहना है बाबा ये प्रॉब्लम है, ये अब आप देख लो, है ना। कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, फ्रेंड बना सकते हैं उसे, बेस्ट कंपेनियन है वो आपका, उसकी कंपनी में रहो, उसको कंपेनियन बना लो, उसको हर जगह साथ लेकर जाओ, सब जगह वो आपका साथ निभाएगा, और जीवन के साथ भी है और जीवन के, है ना, इससे अच्छी पॉलिसी भी नहीं मिलने वाली, है ना। शिव बाबा ये याद है और क्या है, यही तो याद है, फरियाद नहीं करनी है, दिल से बस उसको याद करना है। बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और डे टू डे लाइफ के अंदर आप इजीली कर सकते हो। सारे दिन के अंदर उसको अपना साथी बनाओ, उसको हर काम में अपने साथ ले जाओ, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको बता दो, दिल का बोझ उसको हल्का कर दो, आप देखोगे सारा दिन निकल जाएगा, आपको थकावट नहीं होगी। कोई भी काम करो, बच्चे हैं किसके हैं, उसके हैं, बच्चों की भी प्रॉब्लम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे नहीं है, किसके हैं, उसको को, आपके बच्चे आप देखो, देकर तो देखो, दे सकते हैं प्रॉब्लम्स। अभी तक खुद लेकर बोझा देखा है ना, है ना, इतने सालों तक खुद ही तो लेकर घूम रहे थे, मेरा काम, मेरे बच्चे, मुझे ही देखना है, मुझे ही करना है, मैं नहीं तो कौन करेगा, यही तो कर रहे थे। थोड़ा सा ट्राई करके देखो, ट्राई कर सकते हैं ना, है ना, हम भी कहते हैं पहले इस्तेमाल करो भगवान की याद को, फिर विश्वास कर लेना। मैं ये नहीं कहती हमारी कहानियों पर विश्वास करो, मैं कहती हूँ आप अपनी एक नई कहानी बनाओ, करके देखो, ट्राई करके देखो। फ्री में है, इसमें तो कुछ खरीदना भी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट आती है ना, वो कहते यूज करो, उसके लिए भी खरीदना तो पड़ता है ना। भगवान की याद को, उसके प्यार को, उसके साथ को यूज करके देखो, यही याद है। और आप देखो आपके जीवन में कैसे मैजिक्स होने शुरू हो जाते हैं, है ना। आप खिलाड़ी हो, अपने साथ अकेले क्यों जाते हो मैदान जंग में? मैदान पर अकेले नहीं उतरो भाई, व्यक्ति अलाउड नहीं है पर भगवान तो अलाउड है। मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ एग्जाम्स में, उसको साथ लेकर जाओ। आप देखो किसी और की शक्ति नहीं है जो आपके सामने खड़ी हो जाए, आपने यूज ही नहीं किया ना इस पावर को, है ना। किया किसी ने यूज? गॉडली पावर्स को यूज किया है? फिजिकल पावर्स को यूज करते हैं, उसको कैसे गेन करना है, उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है, उसके लिए युक्तियां आपको लोग भी बताते हैं, आप खुद भी सर्च करते हो और करते भी, एफर्ट्स भी करते हो, टाइम लगाते हो, एनर्जी लगाते हो। उस सुप्रीम एनर्जी को, सुप्रीम पावर को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को यूज किया आपने कभी? किया? देखो बलराम जी कह रहे हैं, भीम है ना आप, है ना। कौन कौन यूज करेगा आपसे? जो हुआ उसको तो भूल जाओ, अभी भूत को नहीं देखते हैं, अभी हम वर्तमान और भविष्य को देखते हैं। हर काम में, हर काम में किसको यूज करना है? आप देखो मैजिक्स अपनी लाइफ के अंदर, करके देखना कैसे चेंज होता है, जिंदगी बदल जाएगी, वंडरफुल। और रात को सोने से पहले क्या करना है? मॉर्निंग में क्या कहा था? गुड मॉर्निंग बाबा। और रात को क्या कहेंगे? गुड नाइट शिव बाबा। कह सकते हैं? मुश्किल है? इजी है ना? गुड मॉर्निंग शिव बाबा, गुड नाइट शिव बाबा, और सारे दिन में हर काम करते आ जाओ मेरे साथ ही, आ जाओ मेरे कंपेनियन, चलो मेरे साथ, खाओ मेरे साथ, यहां चलो वहां चलो, क्या खाओगे? आज से अपनी लाइफ के अंदर सोच लो अकेले नहीं जाना है। बहुत डेंजरस है आजकल, अकेले नहीं जाना है। कोई काम अकेले थक जाओगे, ले लो उसका साथ। कोई भी काम, घरेलू काम भी अकेले नहीं करना है, कहीं जाना है, आना है, करना है, कंपेनियन को भूलना नहीं है, उसकी कंपनी में रहना है। कर सकते हैं? है ना, यही करना है और कुछ नहीं करना है आपको। फिर आप देखो जब बैठोगे ना योग लगाने, याद आएगी नहीं। अब सारा दिन जिसको साथ रखोगे उसको याद दिलाना पड़ेगा आपको, फिर चौकड़ी मारोगे या कहीं भी होगे, बस में होगे, ट्रेन में होगे, गाड़ी में होगे, ये नहीं कहोगे कि याद आती नहीं है, दिल लगता नहीं है। दिल उसी से ही लगता है और किसी से लगता ही नहीं है। तो याद आएगी नहीं, याद सताएगी, है ना। कर सकते हैं ना आप? देखो, क्योंकि सारा दिन तो बच्चों को, काम को याद करते हो, फिर दो मिनट के लिए कहते हैं चलो भगवान को याद करते हैं। अब सारा दिन जिसको याद किया है, जब अकेले बैठोगे तब भी तो उसकी याद आएगी ना। जो मैं हूं और मेरापन है ना, मेरे बच्चे, मेरा काम, मेरा घर, वही तो याद आएगा। जब मेरा बाबा हो जाएगा ना, मैं उसकी वो मेरा, तो वो मेरा याद आएगा। सिंपल है ना, इसलिए तो याद नहीं आती है उसकी। फिर मन भी वही है, तन भी वही है, और धन भी उसी से पूछ कर ही यूज कर रहे हैं, है ना। कोई भी काम हो, काम वही करना है, ऐसे नहीं है बच्चों का काम नहीं करना, सब कुछ करना, बस उसको साथ में ले लो। आप देखो आपका हर काम कैसे बेहतरीन हो जाता है। कर सकते हैं ना सभी? सब कर सकते हैं? तो सुबह से लेकर रात्रि तक उस सुप्रीम साथी को अपना साथ ले लो, कंपेनियन बनाओ, उसके साथ रहो, फिर देखो मैजिक्स, वंडरफुल मैजिक, है ना। बहुत अच्छी तरह। मैं आपको अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ और फिर हम मैजिक को कैसे करना है थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे। एक छोटी सी वंडरफुल स्टोरी बताती हूँ, रियल लाइफ स्टोरी अपनी बताती हूँ। बहुत सारे मैजिकल अनुभव हैं मुझे अपनी ज़िंदगी के, तो आज आपके साथ एक मैजिकल अनुभव शेयर करती हूँ। मैं दिल्ली में थी, जॉब करती थी, अकेले रहती थी। उस समय सेंटर पर नहीं रहते थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स ज्ञान में नहीं चलते थे, तो परमिशन नहीं थी। लेकिन जाती थी सेंटर पे और बाबा पर मेरा पूरा निश्चय था। तो क्या हुआ, एक बारी मैं ऑफिस से आई और अचानक से ना तबीयत खराब हो गई। शाम को ही आते हैं अधिकतर ऑफिस से, 7-8 बजे का टाइम था, तो तबीयत खराब हुई। धीरे धीरे पेट खराब होने लगा, डायरिया हो गया। मेरे पास जो मेडिसिन थी मैंने लेना शुरू किया, मुझे लगा ठीक हो जाएगा। रात के 12 बज गए, दिल्ली में सर्दियों की रातें थी, मेरी हालत इतनी खराब हो गई, आप मानोगे इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, जो मुझे एक बार तो ऐसे फील हुआ कि ये मेरे जीवन का आखिरी दिन है, इतनी बुरी हालत हो गई। एंड ऑफ, मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ पूरा इंसिडेंट। तो मैंने हार कर एक काम किया, सर्दियों की रातें थी ना, बहुत ठंड होती है आपको पता है दिल्ली के अंदर, तो मैंने क्या किया, शिव बाबा को कहा, बाबा देखो अब मेरे में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, अभी या तो आप मुझे ऊपर उठा लो या तो मुझे ठीक कर दो। जो सरेंडर कर देते हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ अक्सर दिक्कत क्या होती है, हम सरेंडर नहीं करते, अर्पित नहीं करते, कहते तेरा तुझको अर्पण, देने के बाद भी बुद्धि लगाते रहते हैं, कह दिया है ना, बच्चों का आप देख लेना, फिर भी बुद्धि लगाएंगे, पता नहीं क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, विश्वास नहीं है ना, विश्वास नहीं है, विश्वास ही करना होता है। मैंने पूरा सरेंडर किया, अभी या तो आप इस दुनिया में रखना है तो ठीक कर दो, नहीं तो ऊपर उठा लो, क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं है। मैंने सारे घर के दरवाजे बंद किए, सारे कमरे का भी दरवाजा बंद किया और रजाई के अंदर अच्छे से बैठ गई, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी, कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई थी, और बाबा को कहा, बाबा अभी आप देखो। मैं रियल लाइफ इंसिडेंट बताती हूँ अपनी लाइफ का, मुझे बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव हुआ। ऊपर से एक लाइट आई, बॉडी में प्रवेश हुई, चारों ओर लाइट ही लाइट थी। उसके बाद मैं सो गई, सुबह उठी एकदम फ्रेश, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार तो मुझे लगा कि सपना तो नहीं था, पर सपना नहीं था। रियली बता रही हूं, जिस समय आप अपनी लाइफ को सरेंडर कर देते हो। हम दिल्ली में थे, एक माता अकेली रहती थी बेचारी। मैं आपको बताती हूँ, उसने मुझे अपने दिल की बात बताई, कहती दो बेटे हैं, एक पुणे में रहता है और एक फॉरेन कंट्री में रहता है, हस्बैंड नहीं था, तो उसने कहा कि दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, जब बुलाऊं मेरी सेवा में आ जाते हैं। बताती है कि उसने बताया कि मैं तो ठीक ठाक ही थी, अचानक से तबीयत खराब हो गई और इतनी खराब हुई, कहती मुझसे एक गिलास पानी का नहीं पिया जाता था। तो कहती मैंने बाबा को अपना तीसरा बेटा बनाया हुआ था। मैं कहता, अरे भगवान को हर संबंध से याद कर सकते हो, वो आपका माता पिता बंधु सखा बेटा भी बन सकता है। उसने मुझे अपना बताया कि बेटा कैसे बनाया, उसने कहा मैंने तीसरा बेटा भगवान शिव बाबा को बना रखा है। तो कहती है एक बार ऐसी हालत हो गई कि पानी का गिलास उठाने की हिम्मत नहीं थी, मुझे इतनी प्यास लगी, समझ नहीं आया मैं क्या करूं, अब बच्चों को बुलाऊं तो फॉरेन कंट्री से उस समय थोड़ी ना आएगा, पुणे से उस समय थोड़ी ना आएगा। तो कहती मैंने बाबा को कहा तो मेरा तीसरा बेटा है ना, मुझे पानी पिला। उसका अनुभव वो बताती है, कहती है मैंने बस बाबा को दिल से कहा तू पानी पिला दे, तो मेरा बेटा है ना। कहती है ऐसे तो नहीं कि गिलास उठकर आएगा, पर कहती है उस समय मुझे ऐसे फील हुआ मेरी प्यास बुझ गई। ये प्रैक्टिकल अनुभूतियां हैं जो लोग बहुत वंडरफुल करते हैं, और मैं ये चाहती हूं आप भी अपनी जिंदगी में अपने को अकेला नहीं समझो। वो हजार भुजाओं वाला सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा हर पल हर परिस्थिति में आपके साथ है। आप ये याद रखो, भूलो नहीं, कुछ भी हो जाए, कोई इंसान साथ दे ना दे, वो सर्वशक्तिमान वो साथी आपके साथ है। एक बल एक भरोसा रखो और फिर मैजिक देखो, है ना? कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो अभी दो मिनट के लिए, कुछ पलों के लिए हम उस एक परम पिता परमात्मा को अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करते हैं। आज से आपकी लाइफ में आप जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं ना आपके घर में, अब उसमें एक और जोड़ लेना। जोड़ लेंगे, एक मेंबर बढ़ गया आपकी लाइफ के अंदर, सब उसको साथ लेकर जाना, है ना? आपकी लाइफ के अंदर एक व्यक्ति बढ़ चुका है, ठीक है ना? भूलना नहीं, बिल्कुल भूले तो भूले होती रहेंगी। जो गलतियां होती है ना, गलत फहमियां होती है, भूले होने का कारण है उसे भूल जाते हो। जो गलतियां होती है उसका एक ही कारण होता है ना? जो बिगड़ी को बनाने वाला उसी को भूल गए, जो जीवन को सवारने वाला उसी को भूल गए। तो चलो चारों तरफ से बिल्कुल रिलैक्स, एकदम मन को शांत करेंगे। रिलैक्स, ये जीवन स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है, गॉडली गिफ्ट है, और इसीलिए मैं हर दिन की शुरुआत अपने परम पिता परमात्मा की याद से करता हूं। आंख खुलते ही दिल से कहता हूं गुड मॉर्निंग शिव बाबा। फील करें स्वयं परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान सूर्य की तरह ऊपर आकाश से अपने किरणों रूपी हाथ से मुझे वरदान दे रहे हैं। जीवन की हर डगर में विजयी भव, सफलता मूरत भव, निर्विघ्न भाव, सदा सुखी शांत आनंदमय भाव स्वीकार करें ईश्वरीय वरदानों को। मैं रोज मुख और शरीर को स्वच्छ करते समय अपने मन मंदिर को भी साफ कर लेता हूं। अहम वहम की मिट्टी को मन मंदिर से निकाल देता हूं। सब बोझ सब तकलीफें उस दुख हरता सुख करता को अर्पित कर देता हूं। दिल से कहता हूं बाबा ये सब आप ले लो। मैं रोज भोजन बनाते हुए खाते हुए बस उसको याद करता हूं, उसको बुला लेता हूं, उससे पूछकर भोजन का हर निवाला खाता हूं, उसके अंग संग रहकर हर काम करता हूं। जब भी बाहर जाता हूं तो बाबा को कहता हूं, आ जाओ मेरे साथ। और वो मेरा पिता मुझे अपने किरणों रूपी सुरक्षा कवच प्रदान कर सुरक्षा प्रदान करता है। फील करते जाएं हर पल के साथ को, भगवान ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा है, कस के पकड़ ले, कभी ना छोड़ने वाला हाथ जो हर पल आपके साथ है, हर परिस्थिति में, जिसने मुझे मैं जो हूं जैसा हूं वैसा ही स्वीकार किया है। बस अब ये साथ, ये हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, पकड़ ले हाथ। मुझे जब भी दिक्कत होती है मैं बस कहता हूं, बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। और बस मेरा साथी हाजिर हो जाता है। फील करें जीवन के सत्य को। मैं अपने दिल का हाल उसे बताता हूं, हर कर्म में उसे साथी बनाता हूं, और रात को सोने से पहले उसे गुड नाइट कहकर सोता हूं। मेरा जीवन ईश्वरीय छत्र छाया में पूर्ण रीति सुरक्षित है। वहां रे मैं, वहां मेरा भाग्य, जो खुद भाग्य विधाता भगवान हर पल, हर दिन, हर वक्त, हर परिस्थिति में मेरे साथ है। अनुभव करें इस प्यार को, जो निष्काम है, निस्वार्थ है, निष्कपट है, सदा का है। इससे बढ़कर, इससे बेहतर ना कोई संबंध है, ना कोई साथी है। यही सत्य है। ओम शांति, शांति, शांति। तो आज से, अभी से इस हॉल में आए तो अकेले थे या दुकेले थे, पर अभी हर एक के साथ, वो जो दिखाते हैं ना भागवत में, हर गोपी के साथ, एक्चुअली में ये भगवान है, परमपिता परमात्मा, जिसको हम हर पल अपने साथ रख सकते हैं। तो अकेले नहीं जाना है ना, भूलना नहीं गलती से, नहीं तो गलतियां होने लग जाएंगी, है ना। तो उसको साथ लेके जाना, ठीक है ना। अकेले कोई जाएगा है ना, और आप देखना नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो आप सबके साथ इतने सारे अनुभवों का खजाना होगा, है ना। एक्सपीरियंस सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, और उसका एक्सपीरियंस सबसे बड़ी अथॉरिटी है सारी दुनिया में। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, भगवान आप सबका साथी है।
ओम शांति।